नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास रेडियो प्रोग्राम नई दिशा में। मैं हूँ प्रेमा नेगी।
और मैं हूँ हमेशा की तरह आपका दोस्त जगत चंदौली।
अरे जगत, इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हो? इस गुस्से की वजह जान सकते हैं?
प्रेमा, मेरे गुस्से की वजह आज की नई युवा पीढ़ी है।
आखिर हुआ क्या, बताएंगे या पहेलियां बुझाते रहेंगे?
क्या बोला जाए प्रेमा जी, वही हमेशा की दो टूक बात। मैंने आज से सुबह व्यायाम के लिए पार्क जाने का निश्चय किया और पार्क में जब पहुंचा तो देखा चार लड़के आती जाती लड़कियों पर छींटाकशी कर रहे थे।
तो आपने कुछ कहा नहीं उनको?
कहा क्यों नहीं, और उस समय तो उन्होंने अपनी हरकतें बंद कर दी, पर मुझे नहीं लगता कि उन पर मेरी बात का कोई असर पड़ा होगा।
युवाओं पर किसी बात का कोई असर नहीं पड़ता जगत जी। ऐसी रोज सैकड़ों घटनाएं होती हैं, कुछ पता चल जाती हैं और कुछ शहर के शोरगुल में दबकर रह जाती हैं।
प्रेमा, क्या आपको नहीं लगता कि देश में सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है?
बिल्कुल
हाँ, तभी तो लोगों का विपरीत सेक्स के प्रति नजरिया बदलेगा।
हाँ, और अगर हम सेफ सेक्स के बारे में चेतना फैलाने की बात करते हैं तो यकीनन सेक्स एजुकेशन इसमें बड़ी भूमिका निभा सकती है, HIV जैसे संक्रमण से लड़ने में तो निश्चित तौर पर।
तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं हमारा अगला सेगमेंट, जानो अनजाने।
दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारे सेगमेंट जानो अनजाने में हम आपको देते हैं HIV और एड्स से जुड़ी कुछ खास जानकारियाँ।
और हम सभी को HIV से संबंधित कोई न कोई शंका रहती है, क्योंकि हमारे पास पूरी जानकारी नहीं होती
और इसी के चलते कई भ्रांतियाँ फैलती हैं।
वास्तव में HIV से बहुत आसानी से बचा जा सकता है, क्योंकि ये हवा में नहीं फैलता। इसीलिए किसी HIV पॉजिटिव व्यक्ति से साधारण संबंध, साथ उठने बैठने, साथ रहने, खाने पीने से HIV का फैलना नामुमकिन है। इस वायरस को हमारे शरीर में घुसने के लिए हमारे शरीर के तरल पदार्थों का आदान प्रदान होना जरूरी है, और वो भी केवल कुछ तरल पदार्थों का, जैसे खून, योनिस्त्राव या वीर्य, पस वगैरह वगैरह। और याद रहे, इन पदार्थों को छू लेने से नहीं बल्कि इनके आदान प्रदान से।
तो यदि किसी HIV पॉजिटिव व्यक्ति के साथ हमारे इन शारीरिक तरल पदार्थों का आदान प्रदान हुआ है, तभी HIV होने की संभावना है। इसलिए HIV से बचने के लिए केवल हमें जानकारी और सावधानी की जरूरत है, क्योंकि किसी को देखने से मालूम नहीं पड़ता कि उन्हें HIV है या नहीं, और ऐसे में किसी के साथ भी इस तरह का आदान प्रदान हो जाए तो HIV का खतरा बढ़ जाता है।
बिल्कुल ठीक।
और अगर इससे जुड़े आपके कोई सवाल हैं तो तुरंत हमें लिखकर भेजें। हमारा पता है, कार्यक्रम नई दिशा, 177 बेसमेंट, अशोका इनक्लेव 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद 121003, हरियाणा। दोस्तों, अब समय है भेजा फ्राई का।
तो अब बुलाते हैं हमारे क्विज मास्टर को आज के सवाल के लिए।
आज का सवाल है, HIV वायरस से संक्रमित होने से बचने का एक उपाय बताएं। फिर से दोहराता हूं, HIV वायरस से संक्रमित होने से बचने का एक उपाय बताएं। आपके ऑप्शन हैं, ए, हर संभोग के दौरान कॉन्डोम का सही उपयोग करके, बी, HIV पॉजिटिव लोगों से दूरी बनाकर, सी, हस्तमैथुन न करके, डी, सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल न करके। अपने ऑप्शन फिर से सुनिए, ए, हर संभोग के दौरान कॉन्डोम का सही उपयोग करके, बी, HIV पॉजिटिव लोगों से दूरी बनाकर, सी, हस्तमैथुन न करके, डी, सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल न करके।
पिछले हफ्ते का हमारा भेजा फ्राई सवाल था कि प्रवासियों को HIV का खतरा ज्यादा क्यों होता है,
और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अकेलापन और परिवार से दूरी प्रवासियों को असुरक्षित यौन संबंधों और ड्रग्स लेने की ओर ले जाती है।
और सही जवाब देकर पुरस्कार जीतने वाले हमारे इस हफ्ते के भाग्यशाली विजेता हैं विनोद रावत उत्तराखंड से। विनोद, आपको नई दिशा की पूरी टीम की ओर से हार्दिक बधाई। आप हमें अपना जवाब इस नंबर पर SMS कर सकते हैं। नंबर है 9717678223। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए, 9717678223। जवाब देने के लिए अपने मोबाइल से मैसेज टाइप करें ND4 भेजा फ्राई स्पेस फिर आपका ऑप्शन ABC या D। तो देर किस बात की, दीजिए सही जवाब और जीतिए मस्त भेजा फ्राई कैप। और याद रहे, सिर्फ SMS ही करना है।
तू मेरी अधूरी प्यास प्यास तू आ गई मन को रास रास अब तो तू आ जा पास पास। कैसी
सामने ये कौन आया दिल में हुई हलचल।
अरे जगत, ये अचानक गाना क्यों गाने लगे?
प्रेमा, लगता है आपको याद नहीं कि हमारे अगले सेगमेंट आमने सामने का वक्त हो गया है। और आज हमारे मेहमान हैं बहुत ही खास, क्योंकि वो अपनी संस्था के माध्यम से उन्हीं मुद्दों पर काम करते हैं जिन पर हमारा ये रेडियो कार्यक्रम है।
जी हाँ, आज हमारे साथ है रमन चावला जी। रमन जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद।
हम चाहेंगे कि बातचीत शुरू करने से पहले आप हमारे श्रोताओं को अपने बारे में कुछ बताएं।
मेरा नाम रमन चावला है, मैं लॉयर्स कलेक्टिव HIV यूनिट से हूँ। हमारी संस्था है जो HIV से संबंधित कानूनी मुद्दे हैं उन पे काम करती है। हम जो HIV पॉजिटिव लोगों के लिए केसेस लड़ते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए केसेस लड़ते हैं और ये हम मुफ्त में लड़ते हैं। इसके साथ हम बहुत सारी एडवोकेसी भी करते हैं, ऐसे जो कानून जिनका HIV के कंट्रोल में कोई इम्पैक्ट हो सकता है, कोई फ़र्क पड़ सकता है, उन कानूनों पर हम सरकार के साथ या सरकार के खिलाफ जैसे भी हो हम एडवोकेसी करते हैं।
HIV के ऊपर काम करते समय आप लोगों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है?
एक बहुत बड़ी समस्या जो हम फेस करते हैं वो ये, मतलब हम तो क्या फेस करते हैं लेकिन मुझे लगता है कि HIV पॉजिटिव इंसान को जो समस्या होती है वो होती है लीगल सर्विसेज एक्सेस करने की। हमारे देश में लीगल सर्विसेज इतनी महंगी हैं और इतनी कम्बरसम है कि एक आम आदमी तो के लिए कितना मुश्किल होता है, और एक HIV पॉजिटिव इंसान जो अक्सर इतना गरीब होता है, हम अक्सर देखते हैं कि हमारे क्लाइंट इतने गरीब होते हैं कि उनके लिए कितना मुश्किल होता है लीगल सर्विसेज को एक्सेस करना। कईयों के लिए तो कोर्ट फीस देना इतना मुश्किल हो जाता है और जो आम रोज़मर्रा के जो खर्चे आते हैं केस लड़ने में वो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो कुछ को तो हम यहाँ पर फ्री लीगल एड दे देते हैं, लॉयर्स कलेक्टिव में हम फ्री लीगल एड देते हैं, लेकिन हर HIV पॉजिटिव इंसान तो लॉयर्स कलेक्टिव को भी एक्सेस नहीं कर पाता। और दिल्ली से बाहर, मुंबई से बाहर, छोटे छोटे गाँव में इतने सारे HIV पॉजिटिव लोग हैं जिनको कानूनी सेवाओं की ज़रूरत है लेकिन वो उन तक नहीं पहुँच रही। तो एक बहुत, ये बहुत ही बड़ी एक चुनौती है कि किस तरह हम कानूनी सेवाएं उन बहुत सारे HIV पॉजिटिव लोगों तक पहुंचाएं जिनको इनकी ज़रूरत है।
आज हमारे देश में HIV को लेकर सबसे बड़ी चुनौतियां किस तरह की हैं?
सबसे बड़ी चुनौती हमारे देश में ये है कि HIV पॉजिटिव लोगों का अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ना सिर्फ हमारे देश में लेकिन दुनिया भर में हम देखते हैं कि HIV पॉजिटिव लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, और अगर हमें HIV को फैलने से रोकना है तो हमें उनके अधिकारों की रक्षा करनी होगी। हम अक्सर देखते हैं कि HIV पॉजिटिव लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो HIV पॉजिटिव होते हैं, बच्चों को स्कूल में एडमिशन देने से मना कर दिया जाता है इसलिए क्योंकि HIV पॉजिटिव हैं, या फिर उनके पेरेंट्स HIV पॉजिटिव हैं इस वजह से भी उनको स्कूलों में एडमिशन देने से मना कर दिया जाता है। अक्सर HIV पॉजिटिव लोगों को अस्पताल में इलाज करने से मना कर दिया जाता है। तो ये जो उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है ये बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे समाज में अक्सर ये देखा गया है HIV पॉजिटिव लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और बहुत ज़रूरी है कि हम इससे लड़ें, हम सब इकट्ठा होकर HIV पॉजिटिव लोगों के अधिकारों के लिए लड़ें।
HIV से संबंधित कौन सी मुख्य बातों का हमारे श्रोताओं को ध्यान रखना चाहिए?
क्योंकि मैं एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन से आ रहा हूँ, एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन से आ रहा हूँ जो HIV पॉजिटिव लोगों के अधिकारों की बात करते हैं, गुजारिश करूंगा सारे आपके लिसनर से कि वो HIV पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव ना करें, उनके अधिकारों की रक्षा करें। ह्यूमन राइट्स हर एक के लिए होते हैं, आपके लिए, हमारे लिए और एक HIV पॉजिटिव इंसान के लिए है। जो एक हम राइट्स की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या किसी भी अधिकारों की, वो हर इंसान के लिए होते हैं। आपको और मुझे तो वो अधिकार मिल रहे हैं लेकिन बहुत सारे तो HIV पॉजिटिव इंसान हमारे देश में हैं जिनको वो अधिकार नहीं मिल रहे हैं। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि उनको, उनके अधिकारों की रक्षा की जाए और कोई भी उनके अधिकारों का उल्लंघन ना करे।
हमारे कार्यक्रम में श्रोताओं को जानकारी देने का बहुत बहुत शुक्रिया।
आपको भी धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मैं जितने भी हमारे लिसनर्स हैं उनसे एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि वो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव ना करें, उनके अधिकारों की रक्षा करें, ये बहुत जरूरी है।
जीने के इशारे मिल गए, बिछड़े थे किनारे मिल गए।
अरे जगत, हमारे श्रोता भी कह रहे होंगे कि इतनी देर से हम अपनी ही गाए जा रहे हैं।
तो आपके कहने का मतलब है कि श्रोताओं की बात सुनने का समय हो गया है।
जी हाँ, तो हो चला है वक्त आपके भेजे पत्रों को शामिल करने का,
यानी कि हमारे अगले सेगमेंट आपकी बात का। आज का हमारा सवाल है शोभा पुंडीर का, जो चंबा टिहड़ी गढ़वाल की रहने वाली है, और ये पूछ रही हैं कि गर्भवती माँ से उसके बच्चे को एड्स से बचाया जा सकता है, अगर हाँ तो कैसे। हाँ शोभा जी, गर्भवती माँ से उसके होने वाले बच्चे को एचआईवी संक्रमित होने से काफी हद तक रोका जा सकता है, अगर डिलीवरी के टाइम और उससे पहले भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार सही दवाइयों का इस्तेमाल किया जाए, और जन्म के बाद माँ के दूध पिलाने के समय भी उचित चिकित्सा पद्धति का अनुसरण किया जाए तो एचआईवी संक्रमण को काफी हद तक रोका जा सकता है।
और इनका दूसरा सवाल है कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ सोता है और सोते समय उन दोनों की सांसें एक दूसरे से मिल जाती हैं, तो क्या एड्स तब भी फैलता है। शोभा जी, अगर कोई संक्रमित व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ सोता है और उन दोनों की सांसें एक दूसरे से मिलती हैं, तो इससे एचआईवी संक्रमण नहीं फैलता है। लेकिन हाँ, अगर इन दोनों व्यक्तियों के बीच असुरक्षित यौन संबंध स्थापित हो, तब एचआईवी संक्रमण की संभावना बहुत बढ़ जाती है। श्रोताओं, अगर आप नई दिशा के बारे में अपने विचार हमें बताना चाहते हो या आपके मन में एचआईवी को लेकर कुछ सवाल हो तो हमें जरूर लिखें। अगर आप चाहेंगे तो हम आपका नाम गोपनीय रखकर आपकी समस्या के समाधान की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा पता है, कार्यक्रम नई दिशा, 177 बेसमेंट अशोका इनक्लेव 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद 121003, हरियाणा। हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा।
और देखिए दोस्तों, चलते चलते कार्यक्रम में वो घड़ी भी आ गई है जिसका आपको और हमें भी बेसब्री से इंतजार रहता है, यानी कि समय हो चला है हमारे साप्ताहिक धारावाहिक जीवन की राह सुनने का।
अरे ये क्या कर रही है, इतनी देर से बच्चे भूखे ही रो रहे हैं, न जाने कब खाना बनेगा और कब ये बेचारे बच्चे खाएंगे। बाप को तो इनकी परवाह है नहीं, कम से कम तू तो कुछ ध्यान दे।
बस बस माँ जी, हो गया, दाल बन गई है, चावल रखे हैं चूल्हे पर।
माँ आप मम्मी को देखो, चावल मैं देख लेती हूँ।
मेरी समझदार बेटी, ध्यान से हाँ, हाथ मत जला लेना।
चिंता मत करो माँ, आपको देख देख कर मैं सब सीख गई हूँ।
तुझे तो स्कूल जाना चाहिए था, इस घर के चूल्हे चौके में तुझे कहाँ धकेल रही हूँ मैं।
स्कूल भी चली जाऊंगी माँ।
अरे अगर दाल बन गई है तो उसका पानी पिला दे उसे, तब तक कुछ तो भूख शांत होगी उसकी। ओहो, यहाँ तो बस बोलते ही रहो, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ।
अरे अरे अरे, अरे मेरी रानी बिटिया, क्या हुआ मेरी रानी बिटिया को, सबने अकेला छोड़ दिया। बस 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 बस, माँ आ गई है ना बेटा, अब रोना नहीं, चुप 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 मेरी प्यारी बिटिया।
अरे बहू, थोड़ा गर्म पानी दे दे अपनी माँ को, खांसी से मरी जा रही है ये।
अरे कोई नहीं सुनेगा यहाँ, अपना काम खुद ही करो।
अरे अरे क्या हो गया,
मेरा पैर।
दादी दादी क्या हुआ, माँ देखो दादी गिर गई।
माँ जी क्या हुआ, माँ जी
मर गई मैं।
खाना लगा दूं?
नहीं अभी भूख नहीं है।
आखिर क्या हुआ है, जब से आए हैं परेशान से लग रहे हैं।
कुछ नहीं शीला, अब तुम्हें क्या बताऊं?
क्या आपके स्वभाव को मैं जानती नहीं हूँ? बताइए ना कि क्या बात हुई है।
अरे वही स्कूल की पुरानी कहानी। मेरे इस जन्म में तो प्रिंसिपल साहब मुझसे खुश होने से रहे।
फिर भी आज ऐसा क्या हो गया?
अरे कुछ नहीं, मैं क्लास ले रहा था। बच्चे उत्साहित होकर सवालों के जवाब दे रहे थे कि अचानक प्रिंसिपल साहब आ गए और लगे प्रवचन देने कि बच्चे बिगड़ जाएंगे, हाथ से निकल जाएंगे। उन्हें बस अपना अनुभव सबसे बेहतर लगता है। अरे बीएड मैंने भी किया है, मेरा अनुभव कुछ नहीं है। और उसके बाद भी जब मन नहीं भरा तो ऑफिस में बुलाकर चार बातें सुना दी।
मुझे लगता है उन्हें तुम्हारा खुला व्यवहार पसंद नहीं है। ऊपर से तुम स्कूल में सब छात्रों के प्रिय टीचर भी तो हो। अब इसका हर जाना कहीं ना कहीं तो भरना पड़ेगा ना मास्टर जी।
शायद तुम सही कहती हो, मगर शीला ये बताओ कि टीचर ही अगर समाज में इस व्यवहार के साथ रहेंगे तो बच्चों का भविष्य क्या होगा?
शायद आप ये भूल रहे हैं कि आप एक छोटी सी जगह पर पढ़ा रहे हैं और यहाँ ऐसा होना आम बात है। यहाँ लोग अपने ही दायरे में रहकर सोचते हैं। हम शहर में ही रह लेते तो आपके लिए, आपके करियर के लिए और शायद मन की शांति के लिए ज्यादा अच्छा होता।
नहीं शीला, तुम्हें मालूम है वो मुमकिन नहीं था। और यहाँ गांव में रहकर भी इंसान अच्छा काम कर सकता है। तुम क्या चाहती हो, मैं खुद को बदल दूं क्या?
नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। चलिए खाना लगाती हूँ।
अरे हाँ भाई, बहुत तेज भूख लगी है। सुमन ने खा लिया?
नहीं, जब से स्कूल से आई है मुंह फुलाए बैठी है। आपकी लाडली है, आप ही बुलाइए।
अरे सुमन, सुमन, अरे सुमन बेटा आओ, साथ खाना खाते हैं।
तो भाई सभी प्रेमी जनों का जयपाल की कुटिया में स्वागत है।
आ गया तू, कितनी देर लगा दी। पता है राजेंद्र तो कह रहा था कि जयपाल गोली दे गया।
अब 7 बजे बुलाकर इतने देर से आओगे, मन में तो ख्याल आएगा ही ना।
यार 5 दिन से बुखार चल रहा है।
अरे जयपाल, तुझे फिर से बुखार आ गया?
अरे छोड़िए, तो आते ही रहता है। लेकिन जयपाल वादे का पक्का है, पार्टी होगी और जबरदस्त होगी और ऐसी होगी कि भूल नहीं पाएंगे भाई लोग। अरे इस अजनबी शहर में है ही कौन आप लोगों के सिवा हमारा।
बात तो सही कही जयपाल, इतने तेज बुखार में भी आपको हमारा ख्याल है। वरना ये तो बड़ा अजीब शहर है, आदमी को तो मशीन समझते हैं यहाँ। काम खत्म होने के बाद पानी तक नहीं पूछते, सबको अपनी चिंता है। और हम 4 पैसे पगार में ज्यादा मांग ले तो गुनाह हो जाए।
अरे छोड़ भी राजेंद्र, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, ये फैक्ट्रियों वाले, ये सुधरने वाले नहीं। अरे हम अपना वजन बेकार में क्यों हल्का करें। अरे जयपाल भाई, अब किस बात की देरी हो रही है? क्या समुद्र मंथन करना पड़ेगा?
उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जयपाल है ना।
पूरा मस्त मौला आदमी है जयपाल, हर पार्टी की शान।
अरे भाई तारीफ बाद में कर लेना, पहले जरा खीरा काट, मैं पानी लेकर आता हूँ। बस शुरू आज का कार्यक्रम।
और अब समय है हमारे अगले सेगमेंट क्या किया जाएगा। दोस्तों, हर मोड़ पर जीवन हमारा इम्तिहान लेता है
और किसी न किसी तरह अपनी सूझबूझ से हमें उस इम्तिहान में खरा उतरना पड़ता है। और हमारी यही बातें हमारे चरित्र का परिचय देती हैं।
क्या किया जाए सेगमेंट में हम ऐसे ही कुछ लोगों का जिक्र करते हैं जिन्होंने जीवन की हर परेशानी को एक इम्तिहान के रूप में लिया और उसका समाधान निकालने की कोशिश की।
और आज की ये घटना है उत्तराखंड के कस्बे की, जहाँ पर एक कॉलोनी से थोड़ी दूर एक पुराना खंडहर सा मकान था। लोगों में यही भ्रांति फैली थी यहाँ भूत प्रेत का निवास है, कभी कभी रात को वहाँ आग भी जली दिखाई देती, तो लोगों का भ्रम और बढ़ जाता। मगर एक नौजवान को ये बात खटकी। एक रात वो उस खंडहर की तरफ चल पड़ा तो लोगों ने कहा कि पागल हो गया है, वापस नहीं आएगा।
मगर दोस्तों वो नौजवान वापस आया उस भ्रम भ्रांति का जवाब लेकर। और जानते हैं जवाब क्या था? दरअसल वो खंडहर अड्डा था कुछ नशा करने वाले लोगों का। वो आग जलाते थे और मोहल्ले वाले उसे भूत प्रेत का नाम दे देते थे।
प्रेमा, हमारे समाज में भी अगर हम सच्चाई को नकारेंगे और भ्रांतियों के पीछे मुंह छुपाएंगे तो समस्याओं का हल कभी नहीं निकलेगा।
तो दोस्तों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, मगर अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी यहीं इसी समय। तो तब तक के लिए प्रेमा नेगी
और जगत चंदौली को दीजिए इजाजत। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।
नमस्कार, नमस्कार।